जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मोक्ष आकाश में नहीं है और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष कहा है। अनात्मा के साथ आपको मिलना और उसमें आत्म अभिमान करना, यह मल है, और उसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त में गुणों में वृत्ति का त्याग हो और असम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह जीव दुखी और दीन होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। ऐसे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ, तब दश मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, एक मोक्ष तो क्या है। हे रामचंद्र जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं, आत्मबोध को ही पाकर सुखी हूं। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत आत्म तत्व ही है, और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की पालना करो तो तुमको कर्तृत्व का कुछ स्पर्श न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, घनी वासना तब उठती है जब तक दृश्य में सद्बुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। जैसे भूषण पिघलाकर जब सुवर्ण बन गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है वह बोध से लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, घनी वासना से सुषुप्ति रूप जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से तिर्यक योनि पाता है, अर्थात पशु पक्षी और सर्प आदि होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर और नष्ट वासना से मोक्ष पाता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत संकल्प से रचा है। घट पट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वे ही हृदय में स्थित हो जाते हैं, और जब उनको ग्रहण करते हो तब ग्राह्य ग्राहक का संबंध देखते हो कि यह मैंने ग्रहण किया है और यह मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है वह न ग्रहण करने का अभिमान करता है और न कुछ त्यागने का अभिमान करता है। उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है। रंचक मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उठकर भासित होते हैं, परंतु सब जल ही जल है, जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासित होता है, द्वैत नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जीव को स्वप्न में जो संसार उदय होता है वह कल्पना मात्र होता है, न सत है और न असत है, जीव के चेतने से ही भ्रम भासित होता है, वैसे यह जागृत अवस्था भ्रम मात्र है। स्वप्न और जागृत एक रूप है। जैसे स्वप्न में जागृत का एक क्षण भी दीर्घकाल होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जागृत भी एक दीर्घकाल का भ्रम हुआ है, जिससे जीव सत को असत और असत को सत जानता है, जड़ को चेतन और चेतन को विपर्य ज्ञान से जड़ जानता है। जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। जैसे किसी स्थान में चोर का भ्रम भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों जगत का भ्रम भासित होता है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न भ्रम उदय होता है, वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा में जगत का भ्रम होता है। आत्मा अनंत सर्वगत जीव का बीज रूप है। जैसा उसके आश्रय में स्फुरण होता है, वैसे ही सिद्ध होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के स्वरूप में स्थिति हुई है, वह सदा निसंग होकर विचरता है। जैसे आगे चलकर द्वापर में विष्णु जी के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे, वैसे ही हे महाभाव हो, तुम भी विचरो। हे रामचंद्र जी, पांडु के पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पांडु के पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अस्ति तन्मात्र तत्व में आत्मा आदिक संज्ञा कल्पित ही है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। जैसे सुवर्ण में भूषण और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में 14 प्रकार के प्राणी फिरते हैं। जैसे जाल में पक्षी भ्रमते हैं, वैसे ही जगत में जीव भ्रमते हैं। वही ब्रह्मा चंद्रमा सूर्य लोकपाल आदि होकर स्थित होते हैं और उन्होंने पंचभूतों के कर्म रचे हैं कि यह पुण्य ग्रहण करने योग्य है और यह पाप त्यागने योग्य है। पुण्य से स्वर्गाधिक सुख प्राप्त होता है और पाप से नरक होता है। यह मर्यादा लोकपाल प्रजापति ने स्थापित की है। इस प्रकार संसार रूपी नदी में जीव बहते हैं। संसार रूपी नदी अविच्छिन्न निरंतर बहती देख पड़ती है, पर यह क्षण क्षण में नष्ट होती है। इस जगत में सूर्य के पुत्र यमराज बड़े प्रतापी और तेजस्वी लोकपाल हैं। वही सब जीवों को मारते हैं और उस प्रवाह कार्य को चलाते हैं। उनका जीवों को मारना और दंड देना ही नियम है, परंतु चित्त में वे पहाड़ की नहीं तरल अचल है। वह यमराज हर एक चौजुगी में 8 कभी 7 कभी 12 कभी 16 वर्षों का नियम रखकर किसी जीव को नहीं मारते और उदासीन की तरह स्थित होते हैं। जब पृथ्वी में अधिक प्राणी हो जाते हैं, चलने को मार्ग नहीं रहता और कोई दुष्ट जीव जीवों को दुख देते हैं, जिससे पृथ्वी भारी और दुखी होती है, तब पृथ्वी के भार को उतारने के निमित्त विष्णु भगवान अवतार लेकर दुष्ट जीवों के नाश और धर्म मार्ग की रक्षा करते हैं। इस प्रकार नियम के पालक यम को अपना काम करते अनंत युग व्यतीत हो गए हैं। वैसे ही प्राणी और जगत भी असंख्य हो गए हैं। इस सृष्टि का अब वैवस्वत यम यानी मनु है। वह आगे 12 वर्ष पर्यंत नियम करेगा और किसी को न मारेगा। तब जीव अक्रूर कर्म करने लगेंगे और पृथ्वी प्राणियों से भर जाएगी। जैसे वृक्ष गुच्छों के साथ गुथ जाते हैं, वैसे पृथ्वी भी प्राणियों से गुथ जाएगी। और जैसे चोर से डरकर स्त्री भर्ता की शरण जाती है, वैसे पृथ्वी भी दुखित होकर विष्णु की शरण जाएगी। तब विष्णु जी 2 देह धारण कर पृथ्वी का भार उतारेंगे और सन्मार्ग स्थापित करेंगे। सब देवता भी अवतार लेकर उनके साथ आवेंगे और नर नायक होंगे। एक देह से विष्णु भगवान वसुदेव के घर पुत्र रूप से प्रकट होंगे। उनका कृष्ण नाम होगा और दूसरी देह से पांडु के गृह में अर्जुन नाम से युधिष्ठिर नामक धर्म पुत्र के भाई होंगे और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करेंगे। उसके चाचा के पुत्र का नाम दुर्योधन होगा। उसका और भीमसेन आदि पांडवों का बड़ा युद्ध होगा। दोनों ओर संग्राम की लालसा से 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी होगी और बड़े भयानक युद्ध होंगे। उनके द्वारा हरि पृथ्वी का भार उतारेंगे। हे रामचंद्र जी, उस सेना के युद्ध में विष्णु का अर्जुन नाम अवतार होगा। वह अर्जुन गांडीव धनुष धारण कर मानव स्वभाव में स्थित हो हर्ष शोक आदि विकार संयुक्त महाभिभूत होंगे। युद्ध में अपने बांधवों को देखकर मूर्छित होंगे और मोह और करुणा से उनके हाथ से धनुष गिर पड़ेगा। वह जब आतुर होंगे तब बोध देह से उनको हरि उपदेश करेंगे। जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन मोहित होकर गिरेंगे तब हरि कहेंगे कि हे राजसिंह अर्जुन, तुम मनुष्य भाव को प्राप्त हो क्यों मोहित हुए हो? इस कायनपन को तुम त्यागो। तुम तो परम प्रकाश आत्म तत्व हो। तुम सबका आत्मा, आनंद, अविनाशी, आदि अंत मध्य से रहित, सर्वव्यापी, परम अंकुश रूप, निर्मल, दुख के स्पर्श से रहित, नित्य शुद्ध निरामय हो। हे अर्जुन, आत्मा न जन्मता है न मरता है, होकर भी फिर कुछ नाश नहीं होता, क्योंकि वह अजन्मा, निरंतर, पुरातन और सबका आदि है। शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता, तुम क्यों वृथा कातर हो रहे हो? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला और मरता मानते हैं वे आत्मा को नहीं जानते। यह आत्मा न मरता है और न मारता है, क्योंकि जो अक्षय रूप निराकार आकाश से भी सूक्ष्म है उस आत्मा परमेश्वर को कोई किस प्रकार मार सकता है? हे अर्जुन, तुम अहंकार रूप नहीं हो, इस अनात्म अभिमान रूपी मल को त्याग करो। तुम जन्म मरण से रहित मुक्त रूप हो। जिस पुरुष को अनात्मा में अहम भाव नहीं और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब विश्व को भी मारे तो भी उसको नहीं मारता और न उसे बंधन होता है। हे अर्जुन, जिसको जैसा दृढ़ निश्चय होता है उसे वैसा ही अनुभव होता है। इससे यह मैं मेरा इत्यादि जो मलिन संवित निश्चय है उसे त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। जो ऐसी भावना में स्थित नहीं होते और आपको नष्ट होता मानते हैं वे सुख दुख भोगते और राग द्वेष में जलते हैं। हे अर्जुन, वे अपने त्रिगुण रूप असंख्य कर्मों में बंधते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उपजे हैं, और उन भूतों के अंश श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका अपने विषयों में स्थित हैं। ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती है, नेत्र रूप को, त्वचा स्पर्श को, जिह्वा रस को, नासिका गंध को और श्रवण शब्द को ग्रहण करते हैं। उसमें अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, सोचता है कि मैं देखता हूं, सुनता हूं, स्पर्श करता हूं, स्वाद और गंध लेता हूं। हे अर्जुन, ये सब कर्म कलना से रचे गए हैं। इंद्रियों से कर्म होते हैं और अहम भाव से जीव वृथा क्लेश का भागी होता है। बहुतों ने मिलकर कर्म किया और उनका अभिमानी होकर एक ही दुख पाता है। बड़ा आश्चर्य है कि देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं और जीव उनका अभिमानी होकर सुख दुख और राग द्वेष से जलता है। इसे इनका संग और अभिमान त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। योगी केवल इंद्रियों से कर्म करता है, उनमें अभिमान वृत्ति नहीं करता। हे अर्जुन, इस जीव को अहंकार ही दुखदायक है, क्योंकि उससे वह अनात्मा में आत्म अभिमान करता है। जो अभिमान रूपी विष से रहित होकर चेष्टा करता है वह दुख का कारण नहीं होता, वह सदा सुख रूप है। हे अर्जुन, जैसे सुंदर शरीर विष्ठा और मल से मलिन हुआ हो तो उसकी शोभा जाती रहती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष यदि शास्त्र का वेत्ता और गुणों से संपन्न भी हो पर यदि अनात्मा में आत्म अभिमान करे तो उसकी शोभा जाती रहती है। जो निर्मल निरअहंकार सुख दुख में सम और क्षमावान है वह शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे उसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। हे अर्जुन, ऐसे निश्चयवान होकर कर्म करो। हे पांडु पुत्र, युद्ध तुम्हारा परम धर्म है, उसे करो। अपना अति क्रूर कर्म भी कल्याण करता है, पराया धर्म उत्तम भी दुखदायक है और अपना धर्म अल्प भी अमृत की तरह सुखदायक है। हे अर्जुन, चाहे जैसा कर्म करो, यदि तुम में अहम भाव न होगा तो वह तुमको स्पर्श न करेगा। संग अभिमान को त्याग और योग में स्थित होकर कर्म करो। जो निसंग पुरुष है उसको कोई कर्म करना पड़े वह उसको करता हुआ बंधन को नहीं प्राप्त होता। इसे ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममय कर्म करो, तब शीघ्र ही ब्रह्मरूप हो जाओगे। जो कुछ आचार कर्म हो उसे ब्रह्म में अर्पण करो। संन्यास योग युक्ति से कर्मों को करते हुए भी मुक्ति पाओगे। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, संग त्याग, ब्रह्मार्पण, ईश्वर अर्पण और योग किसको कहते हैं? मोह की निवृत्ति के लिए इनको पृथक पृथक कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रथम तुम यह सुनो कि ब्रह्म किसको कहते हैं। जहां सब संकल्प शांत है केवल एक घनी वेदना है, दूसरी भावना का उत्थान नहीं, केवल अचैत्य चिन्मात्र सत्ता है, उसको परब्रह्म कहते हैं। उसको जानकर उसके पाने का विचार और उद्यम करना ही ज्ञान है, उसमें स्थित होने का नाम योग है। ऐसा निश्चय करना कि यह सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और सब जगत मैं ही हूं, और ब्रह्म से भिन्न कुछ भावना न करना, इसका नाम ब्रह्मार्पण है। नाना प्रकार का जो जगत भासित होता है सो क्या है, भीतर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है। जिसकी शिला की उपमा है ऐसा जो आकाशवत सत्ता स्वरूप है वह शून्य है, न शिला सदृश है। उसके आश्रय से स्पंदन करना सूरती की भांति अन्यवत जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु वह आकाश की तरह शून्य है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले अनेक रूप होकर स्थित होते हैं, सो जल ही है और कुछ नहीं। एक जल ही अनेक रूप देख पड़ता है, वैसे ही एक ही वस्तु सत्ता घट पट आदि आकार होकर भासती है। संवित सार आत्मा में भेद कलना कुछ नहीं, अज्ञान से अनेक भेद कलना विकल्प जाल भासित होकर अनेक भाव को प्राप्त होते हैं। आत्मा के अनेक नाम रूप देखना और भिन्न भिन्न देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि अनेक में अहम प्रतीति से एकत्र भाव देखना अज्ञान है, यह कलना ज्ञान से नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, संकल्प जाल को त्याग करने को असंग कहते हैं। सब कलना जाल को भी ईश्वर से भिन्न न जानने की भावना से द्वैत भाव गलित हो जाने का नाम ईश्वर समर्पण है। हे अर्जुन, जब ऐसी अभेद भावना होती है तब आत्मबोध होता है। बोध से सब शब्द अर्थ एक रूप भासित होते हैं, सब शब्दों का एक ही शब्द भासित होता है और एक ही अर्थ सब शब्दों में भासित होता है। हे अर्जुन, सब जगत मैं हूं, दिशा और आकाश मैं हूं, कर्म काल द्वैत अद्वैत मैं ही हूं। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा ही भजन करो और मुझ ही को नमस्कार करो, तब तुम मुझे ही प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं और तुम मेरे ही परायण हो। अर्जुन बोले, हे देव, आपके दो रूप हैं, एक पर और दूसरा अपर, उन दोनों रूपों में मैं किसका आश्रय करूं जिससे परम सिद्धि को पाऊं। श्री भगवान बोले, हे अनघ, एक समान रूप है और दूसरा परम रूप है। यह शंख चक्र गदा आदि युक्त मेरा समान रूप है और परम रूप आदि अंत से रहित एक अनामय है। उस ब्रह्म रूप को आत्मा और परमात्मा आदि कहते हैं। जब तक तुम अप्रबुद्ध हो और तुमको अनात्म देहादिक में आत्म अभिमान है, तब तक मेरे चतुर्भुज आकार की पूजा और कर्मों को करो। जब प्रबुद्ध होंगे तब मेरे परम रूप को पाओगे जो आदि अंत और मध्य से रहित है। उसको पाकर फिर जन्म मरण में न पड़ोगे। जब तुम मोह आदि शत्रुओं के नाशक और ज्ञानवान होंगे तब आत्मा से मेरा पूजन होगा। मैं सबका आत्मा हूं। हे अर्जुन, मैं मानता हूं कि तुम अब प्रबुद्ध हुए हो। तुमने आत्मपद में विश्राम पाया है और संकल्प कलना से रहित एक आत्मसत्ता में स्थित होकर मुक्त हुए हो। ऐसे योग से तुम भी सब प्राणियों में स्थित आत्मा को देखोगे और सब प्राणियों को आत्मा में स्थित देखोगे। जब सर्वत्र तुमको संबुद्धि होगी तब स्वरूप में तुम्हारी दृढ़ स्थिति होगी। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है, एकत्व भाव से भजन करता है और जिसमें आत्मा से भिन्न और भावना नहीं उठती, वह सब कर्म करके भी फिर जन्म मरण नहीं पाता। हे अर्जुन, जिसमें सब शब्दों का अर्थ है और जो सब शब्दों में अनर्थ रूप है, ऐसी आत्मसत्ता न सत है और न असत। सत असत से रहित जो सत्ता है वह आत्मसत्ता है। वह सब लोगों के चित्त में प्रकाश रूप से स्थित हुई है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।